तो आप ये समझ लो कि लड़की का विवाह कर दिया। माता पिता ने कहा कि बेटी विवाह करने से तुम पुण्य के भागी होंगे और राक्षस की भेंट में तुमको भेजेंगे तो पाप के भागी होंगे। आज के पहले 12 वर्ष के पूर्व के माँ एक लड़का जवान था उसको भेजकर अभी तक हम पश्चाताप करते हैं। आज वो लड़का यहाँ कायम होता तो ये विपद हमारे ऊपर क्यों ऐसे हुआ। किंतु जो बात होनी थी हो गई। सब रोने लगे तो एक लड़का था छोटा, वो कुछ समझता नहीं था, सबको रोता हुआ देख करके अपने घर के ऊपर कोई आपत्ति आ गई ऐसा समझ करके वो छोटा लड़का जो 4-5 साल का था हाथ में एक छड़ी लेकर के और उसने कहा कि उस राक्षस को मैं मार डालूंगा। ये सुनकर के सबको हंसी आ गई। बालक की बात सुनकर उस समय के माँ कुंती देवी उस घर के माँ प्रवेश कर गई। कुंती देवी ने कहा कि रात भर आपको नींद नहीं आई, रात भर से आप सब रो रहे हो, आपके ऊपर ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जो एक प्रकार से रात भर आप रो रहे हो। उन्होंने कहा कि हे देवी, हम लोगों पर जो आपत्ति आई है उसके दूर करने की शक्ति किसी मनुष्य की नहीं है, आप बतलाइए तो सही। हम आपके घर के मां रहते हैं तो आपके दुख सुख में हमको शामिल होना हमारा कर्तव्य है। आपके घर में रह करके हम बहुत दिनों से सुख भोग रहे हैं, आज आप पर विपत्ति आई तो उस विपत्ति के भी हम लोगों को शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवी ये बात है, यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है, एक प्रकार से थी राज की तरफ से एक कर लगा रखा है, एक बड़ा दुष्ट राष्ट्र है, उसकी भेंट के बीच के मां समझो कि जित प्रति एक मनुष्य को और एक गाड़ी समझो पागला और एक भैंसे को भेजते हैं, और जो नहीं भेजेगा उसके सब आदमियों को रक्त आकर खा जाएगा। तो इस बात से कल हमारी पारी है, आज प्रातःकाल ही हमारी पारी है, तो हम लोगों में ये विचार हो रहा है, मेरी स्त्री कहती है मैं जाऊंगी या लड़की कहती है मैं जाऊंगी और मैं कहता हूँ मैं जाऊंगा। तो इस विषय के बीच के माँ ये ऐसी समस्या है कि दूसरे के द्वारा कोई उपकार हमारा हो सके संभव नहीं। कुंती देवी ने कहा कि आप कोई चिंता मत करो, मेरे पास लड़के हैं, उनमें से मैं एक लड़के को राक्षस की भेंट में भेज, क्योंकि हम आप लोगों के घर में रह करके सदा से सुख भोग रहे हैं, आज आपके माँ विपत्ति आ गई तो उस विपत्ति को भी एक प्रकार से हम लोगों को अपने मस्तक पर लेनी चाहिए, तो आप कोई बात की चिंता मत करो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हम राक्षस की भेंट में एक दूसरे के लड़के को, अतिथि के लड़के को कैसे हम भेज दे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं भेजते हैं, आप भी इस घर में बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, आपका जैसा हक है ऐसा ही हमारा हक है, मैं मेरे लड़के को वहां भेज रही हूँ, आपको कुछ कहना नहीं होगा और मैं अवश्य अपने लड़के को समझो कि उस राक्षस की भेंट में भेजूंगी। तब ये सब चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद जब भीमसेन आया तो भीमसेन से कहा कि बेटा यह बात है, सारी बात भीमसेन को समझा और कहा कि आज इस ब्राह्मण के उपकार के वास्ते उस बकासुर के भेंट के रूप में तुम ऐसो जाओ। भीमसेन सुनकर बड़ा खुशी हुआ, जैसे किसी को अपने ससुराल में जाना हुए, इस प्रकार किसी बड़ा खुश है, प्यार हो गया कमर कस कर करके, जिसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं। इतने में राजा युधिष्ठिर आ गए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सुनता हूँ कि भीमसेन को जो आप एक राक्षस की भेंट में भेज रही हो तो ये आपका विचार ठीक नहीं है, आप बुद्धिमती होकर के आपकी बुद्धि आज कहाँ चली गई। बोले बेटा मेरी बुद्धि ठीक है। बोले नहीं, हम और तो 4 भाई है ना, उनमें किसी को भेज दो। माता कुंती बोली कि बेटा जब ये भीमसेन पैदा हुआ था तो मेरी गोद से एक पत्थर के ऊपर शिला के ऊपर गिर पड़ा था, तो शिला का चूर चूर हो गया और इसके फूल की छड़ी भी नहीं आई। तो मैं ये समझती हूँ कि ये भीमसेन जाकर के उस दराक्ष को मार करके के चले आओ। और तुम लोगों में किसी की भी शक्ति नहीं है कि उस दराक्ष को मार करके तुम चले आओ। इसलिए मैं समझ करके ही भीमसेन को भेज रही हूं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद में भीमसेन हुआ समझो कि एक गाड़ी पाकड़ा और उस भैंसे को लेकर वहां पहुंच गया। किंतु वहां वो राक्षस जो है तो उस समय में आया नहीं था, वो आपने 12 बजे के बाद आया करता था और भीमसेन उस दिन प्रातः काल ही चला गया। इस वास्ते उसको बड़ी जोर की भूख लगी। भूख लगने से वो राक्षस के लिए जो बाकड़ा ले गया था, उर्द रांध करके ले गया था, वो खुद ही खाने लगे। अब खाते खाते समझो उसको समय अधिक लगती थी, उसकी खुराक बहुत ज्यादा थी। इतने के बीच के मां समझो बुर्ज से निकल के वो राक्षस जो है सो आ रहा है। अब दूर से राक्षस को देख तो भीमसेन ने लिया किंतु खाना बंद नहीं। राक्षस ने देखा रे कि ये क्या बला है, जो मेरे लिए भोजन आया है उसको ये मूर्ख खा रहा है। इसको ये पता नहीं है कि मैं तेरे को भी खाऊंगा। तो दूर से ललकारा, किंतु भीमसेन कब सुनने वाले थे। नजदीक आ गया और आकर के समझो कि भीमसेन के ऊपर एक मुक्का बांध करके उसके अपने ऊपर सो बड़े जोर के साथ पा मारने से उसका हाथ एक सूसु करने लग गया कि जैसे कोई बजर के ऊपर दे मारा। और भीमसेन तो अपना भोजन करते ही है। भीमसेन अच्छी प्रकार से भोजन कर करके जब तैयार हो गया तब खड़ा बोला, क्यों रे? बोले, तेरे को मालूम नहीं है कि एक प्रकार से थी मेरे लिए भोजन आया है और तू भी मेरा भोजन है, फिर उसको तू तिस करता है, तू उसको खाना शुरू कर दिया, ये क्या बात? बोलो, मैं आज एक प्रकार से थी तुम्हारे लिए भोजन के रूप में नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे को मारने के लिए। तुम जो मनुष्यों को मारते हो उनका बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। अब तो वो राक्षस अपने घमंड के मार करके उसे युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वहां आस पास के वहां जो वृक्ष थे उखाड़े गए और एक दूसरे को मार करके के समझो कि वृक्ष से टूट गए। वहां जो पत्थर पड़े थे पत्थरों से लड़ाई करी, वृक्षों से लड़ाई करी, कि उन सब का चूर चूर हो गया। तब मल युद्ध करने लगे, जैसे दो मल जुट जाते हैं इस प्रकार से जुट गए। इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। आखिर के मां भीमसेन ने जो है समझो उस राक्षस को मार डाला, उसकी चोटी पकड़ करके घुमाया और फिर जमीन पर पटक कर करके के हर एक हाथ उसके समझो कि गले में लगाया और एक पैरों में ऐसा पकड़ करके उसको तोड़ करके उसका टुकड़ा कर और फेंक दिया राजद्वार के बाहर ने, जहां समझो कि दुर्जय के बाहर में उसको फेंक दिया। अपने घर पर जाकर के सो गया। प्रातः काल उठा की समझो कि राक्षस के को मरा हुआ देख करके शहर के लोग उसको मरे हुए को मारने लगे। बाद में ये हुआ, वो तो कहा मैं मारा, वो कहता मैं मारा। आखिर के मां राजा ने समझो कि पूछा कि आज पारी किसकी थी, तो बतलाया उस ब्राह्मण की। तो हलकारे को भेजा, सिपाही को भेजा और सिपाही जाकर के कहा कि राजा साहब ऐसे बुलाते हैं कि जो रात के मां किसकी पारी थी जो गया उसको जट भीमसेन उसके साथ में चलाया और आकर के सारी हकीकत ऐसा बतला। राजा को भी विश्वास हो गया कि ठीक है, इसी ने मारा है। ये शरीर को देख करके अनुमान हो जाता है। उसके बाद में आकर के भीमसेन ने कहा कि अब यहां से आपने चल देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ख्याति हो जाएगी कि बकासुर को किसने मारा, दुर्योधन के कान में आवाज पूंज जाएगी तो कहीं पकड़े जाएंगे। तो उसे घर से वे आगे सो चल। कहने का भी प्राय यहाँ यह है कि कुंती देवी विधवा थी, उन्होंने किस प्रकार से थी अपना समझो की सेवा का काम किया, उस ब्राह्मण की कितनी उच्च कोटि की सेवा की, उनकी जान तक बचा दी। केवल ब्राह्मण की नहीं समझो की नगरवासियों को सदा के वास्ते उसे बकासुर के पंजे से छुटा दिया। तो हरेक माता बहनों को ये ख्याल करना चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार जो है सो सेवा करनी चाहिए। जैसे कुंती देवी सेवा किया करती थी, कुंती का जीवन बहुत पवित्र है, किंतु इतना समय नहीं है कि जो चूड़ी में भरा जा सके, इसलिए और बहुत सी बातें विधवाओं के बारे में कही। तो विधवा माता को अपना जीवन इस प्रकार से बिताना चाहिए और अपनी जीविका के लिए बता ही दिया कि अपने पीर में या ससुराल में रहना हुए तो वहाँ भोजन जो किया जाता है, जैसे समझो कि 1 रुपया का रोज भोजन किया जाता है तो 2-3 रुपया का काम करना चाहिए। आज एक ब्राह्मणी को हम अपने घर के माँ बुला करके रसोई उसे करवाते हैं तो 15 या 20 रुपया का महीना देना पड़ता है, रोटी भी देनी पड़ती है, कपड़ा भी देना पड़ता है। तो उसको ये समझना चाहिए कि रोटी और कपड़े जो है तो किसी रसोईन को बुलाकर रसोई कराते हैं तो उसको भी देने पड़ते हैं और उसको महीना अधिक देना पड़ता है, और मुझको महीना देना नहीं पड़ेगा, तो ये एक प्रकार उसकी अधिक सेवा होगी। और सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिसमें अहंकार आ जावे, और कभी ताना नहीं मारना चाहिए और कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जो काम किया जाता है उसको कभी ये कहना नहीं चाहिए कि मैं काम कर कर के रोटी खाती, ये कभी मुख से नहीं करना। भाग भाग करके काम तो करना किंतु ये कभी कहना नहीं, कहने से थी उसका जो महत्व नष्ट हो जाता है, उसकी सेवा का जो भाव है वो नष्ट हो जाता। अपने को तो ये है ना, केवल भोजन के ही बदले में सेवा नहीं करनी है, अपनी आत्मा का कल्याण भी उससे करना है। तो सेवा करने के समय में ये भाव है कि सब में भगवान विराजमान है और मैं सबकी जो सेवा करती हूँ सो भगवान की सेवा करती हूँ। तो समझो कि वो ऋण से तो मुक्त हो ही जाती है घर में जो भोजन करती है, किंतु इस प्रकार के साधन से भी वो परम गति को प्राप्त हो जाती है। अब दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी माता बहन है कि जिसके घर के भी के मां बहुत रुपये नहीं है, उसके पीर और ससुराल के मां किसी का कोई आदमी नहीं है, वे पीर और ससुराल वाले उसका खर्चा सहन करने के लिए उनकी सामर्थ्य नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जो केवल एकली विधवा होए या घर वाले बहुत गरीब होए, ऐसी परिस्थिति में उसको क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति के मां उनको अपना परिश्रम कर करके अपने शरीर का निर्वाह करना चाहिए। परिश्रम करके कैसे? जैसे कोई वैश्य की स्त्री है तो किसी वैश्य भाई के रसोई का काम कर करके अपना जीवन बिताना चाहिए, या अपने घर के बीच के मां समझो कि जैसे आचार है, पापड़ है, अनेक प्रकार के पदार्थ बना करके और उनको बेच करके अपने समझो कि शरीर का निर्वाह कर लेना चाहिए, ऐसे मूंगों की दाल है या समझो कि चनों की दाल है या कोई प्रकार की दाल बना करके या आटा पीस करके आटे को बेच करके अपने शरीर का निर्वाह कर लेना चाहिए। जो अदब के साथ के बीच के माँ अपनी इज्जत के साथ के बीच के माँ समझो कि अपने व्यापार कर करके या किसी प्रकार से अपनी जीविका चलाकर अपना निर्वाह कर लेना चाहिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है। दोष है चोरी करने के बीच के माँ, और दोष है समझो कि एक मांग कर खाने के बीच के माँ। जो वैश्य जो जाती है, क्षत्रिय जो जाती है, उनका ये कर्तव्य नहीं कि एक प्रकार से हम भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह करें या दूसरे से महीना लेकर के अपना निर्वाह करें। वो महीना ले सकती है अपने पीर वालों से और अपने ससुराल वालों से, यदि वे प्रसन्नता पूर्वक देवे तो उन घरों के मां उनका हक है, किंतु फिर भी उसको ये विचार करना है कि उनकी बदले में सेवा करके के ही महीना लेना चाहिए। ये उनके लिए एक नंबर है, इससे आत्मा शुद्ध होती, अंतकरण पवित्र होता है। ये उनके लिए संक्षेप से जीविका बतला दी गई। अब ये ख्याल करना है कि उन विधवा माताओं के साथ के बीच के मां हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और स्वागन माताओं को उनके साथ में कैसा व्यवहार करना, थी। द्वारन माताओं को उनके साथ के माँ जैसे अपने जो अपनी लड़की है या अपनी कोई बहन है या अपनी कोई माँ है उनके साथ में जैसा व्यवहार होता है उनसे भी बढ़कर के उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। वो विधवा जो बहन यदि छोटी अवस्था के बीच के माँ है और वो घर की स्त्रियां बड़ी है स्वागत स्त्रियां तो अपनी पुत्री से भी बढ़ करके के उसके साथ में प्रेम करना चाहिए। अपनी कोई लड़की है उसके साथ में जब व्यवहार होता है तो उससे बढ़कर उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। कोई बंटवारा हो तो उस विधवा बहन को अधिक देना चाहिए और अपनी लड़की को थोड़ा देना चाहिए। विधवा बहन को बढ़िया चीज देनी चाहिए और वो चीज पहले देनी चाहिए। कोई भी खाने पहनने की चीज होए ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्वागत स्त्री के द्वारा कहीं विधवा स्त्री को दुख न हो जावे। स्वागत स्त्री जो ताना मार देती है या उसको गिना देती है या उसकी सेवा कर करके और कह देती है मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ तू हमारे घर के माँ समझो कि आपने पलती हो, इस प्रकार से कोई बात उसको दुखती कह देती है या उनकी सेवा करके और समझो कि उसको ताना मारती है गिना देती है या उसको समझो कि कठोर वचन कहती है क्रोध करती है इस प्रकार का व्यवहार करती है कि जिस व्यवहार से थी वो विधवा बहन जो है उसके दुख होता है उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं तो उसको दुख देने वाली स्वागन जो बहन है वो मर करके नरक में जाती है या तो उसको इस लोक के बीच के वहां दंड मिल जाता है उसके बदले में वह भी विधवा हो जाती है और नहीं तो मर करके घोर नरक के वहां सो जाती। इस बात को ध्यान में रख कर करके हर एक समझो विधवा माता बहनों को ये ख्याल रखना चाहिए कि किसी को श्राप नहीं देना किसी को दुष्ट नहीं देनी कोई तुम्हारे को कष्ट भी देवे तो ये दिल से कभी श्राप नहीं देना कि मुझको कष्ट देने वाली या स्वागत स्त्री विधवा हो जावे। ये दिल में भाव कभी नहीं रहना ये समझना चाहिए कि मैं जो विधवा हूँ मुझको कितना भारी दुख है इसी प्रकार या भी दुखी हो दुखिया हो जाएगी तो मुझको इसमें क्या लाभ होगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि द्रौपदी जो है उनके पांचों पुत्रों को सुत्थामा ने मार डाला था किंतु वो दुखिया हो गई इसके दुख को देख करके अर्जुन और भीम समझो कि सुत्थामा को पकड़ने के वास्ते गए और पकड़ लाए और जाकर के पूछा कि क्या किया जावे तो द्रौपदी ने यही राय दी कि इसको जान से नहीं मारना जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रोती हूँ इसी प्रकार से अश्वत्थामा की माँ इस अश्वत्थामा के लिए रोएगी और इसके मारने से मेरा मेरे पुत्र कोई वापस नहीं आवेंगे इसलिए इसको जान से नहीं मारना। तो हरेक विधवा माताओं को ये विचार करना चाहिए कि इसके विधवा होने से मुझको कोई फायदा नहीं। अपने दिल में ये भाव रखना चाहिए कि मुझको जो दुख होता है ये तो मेरे प्राण से होता है ये तो ईश्वर का विधान है इसको तो हाथ सांस करके उसको बर्दाश्त करना चाहिए और अपने दिल से ये समझना चाहिए इसका कोई अपराध नहीं है ये जो मुझको दुख देने में निमित्त बनती है ये तो निमित्त मात्र है इसका कोई भी अपराध नहीं है उसको आश्वासन देना चाहिए कि तुम्हारा इसके माँ कोई ऐसा दोष नहीं ये मेरे प्रारंभ का ऐसा दोष है। और भाइयों को क्या करना चाहिए कि हरेक प्रकार से थी वो विधवा जो बहन है उनको सुख मिले शांति मिले अपने घर के माँ कोई चीज की आवश्यकता हो समझो तो अपनी स्त्रियों के लिए अपनी बेटी के लिए अपनी घरवाली औरतों के लिए जो हम चीज ला करके देवे और अपने घर में कोई विधवा हो तो पहला उसको भी पूछना चाहिए कि क्या चीज तुम्हारे को सरकार है हरेक प्रकार से थी उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करनी थी। और विधवा जो स्त्री है उनके रुपये जो है उनका ब्याज जो है एक प्रकार से अधिक से अधिक मिले ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, उन रुपयों की रक्षा करनी चाहिए। किसी के मांस के रुपये डूब जावे तो ये समझना चाहिए कि उनके नींद डूबे हमारे ही डूबे हैं, ये समझ करके उनके रुपयों की तो पूर्ति कर देनी चाहिए और उसको खबर भी नहीं देनी चाहिए कि तुम्हारे रुपये अमुक आदमी के वहां जमा कराए थे, अरे वो आदमी समझो कि डूब गया, आसामी फैल होगी, तेरे रुपये भी डूब गए। ये कभी उसको कानों में वो बात नहीं सुनानी चाहिए। सुनाने के बाद वो तुम्हारे से रुपया लेगी नहीं, तो अपना ये कर्तव्य है कि एक प्रकार से सब प्रकार से उनके रुपयों की रक्षा करनी चाहिए। किंतु वर्तमान समय के बीच में इसके विपरीत बात हो रही है। आजकल के समय के बीच में समझो कि उनका जो गहना जो है कहीं अपने सासू और ससुर पास विधवा का गहना रह गया या जेठ जिठानी के पास उसका गहना रह गया तो उसको हड़प जाते हैं और उसको समझो दर्शन भी नहीं कराते, वो रोती रह जाती है। उसकी दूसरी स्थिति समझो कि एक प्रकार से विधवा का जो धन खाते हैं उनका एक प्रकार से समझो कि धर्म का नाश होता है और उनको निश्चय तो दंड होता है इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी। इस बात को ध्यान में रख करके और विधवा बहन का जो धन है वो एक प्रकार से गोधन से भी ज्यादा एक प्रकार से समझो कि रक्षा करने के योग है। देवताओं के धन से भी उसकी रक्षा अधिक करनी चाहिए। ब्राह्मण जो है समझो कि कोई अपने गौ है उनका जो धन है उससे भी ज्यादा एक प्रकार से उसकी रक्षा करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो कोई पुरुष विधवा स्त्री के रुपयों को हजम कर जाता है, उसके गहने को हजम कर जाता है, इस लोक में उसकी अपकीर्ति होती है और इस लोक और परलोक में वो भारी दुखी हो जाता है और समझो कि उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती। इस बात को ख्याल में रख करके और विधवा बहन का जो कोई धन है कोई हक है तो उसके कब्जे में रखना चाहिए और फिर उसकी रक्षा करनी चाहिए जिससे वो धन बढ़िया रहे, किंतु उसके अधिकार के मार रखना चाहिए, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। इसी प्रकार से पीर के बीच के मां उसका जो धन है रुपया है गहना है उसकी रक्षा पीर वालों को करनी चाहिए और इस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए कि अपना धन और अपना गहना भलाई नष्ट हो जाओ किंतु उसका कायम रहना चाहिए। पीर वाले भी माता पिता जो होते हैं वे तो उनकी रक्षा करते हैं किंतु बाद के बीच के वहां बहुत कम होते हैं ऐसे जो उसे विधवा के धन की रक्षा तो करें। हम लोगों को उचित है कि हरेक प्रकार से उनको सुख पहुंचाना चाहिए और प्रिय वचन बोलना चाहिए और सत्य वचन हित का वचन बोलना चाहिए तो जो आप फैन गदगद हो जाओ प्रसन्नचित हो जावे। जिस घर के बीच के माँ विधवा से दुखित होकर के और आंसू बहाती है उस आंसुओं से जितने रेत के कण के भीजते हैं उतने वर्षों तक वो दुख पहुंचाने वाला घोर नरकों के वहां वास करता है। तो हम लोगों को उस विधवा माता की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। आजकल के समय के बीच के मां जो है बहुत से भाई एक प्रकार से विधवा माता बहनों को कष्ट देते हैं और उनको प्रत्यक्ष में इस लोक में बदला मिलता है या ना बदले में दुख मिलता है और मरने के बाद जो यमराज के घर मिलेगा वो तो के तो भगवान ही जानेंगे कि यमराज के भोगने वाला ही। तो ये बतलाया जाता है कि इसके ऊपर आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। विधवा माताओं के आंसुओं को देख दे करके समझो कि हम लोग को रोना चाहिए, उसके दुख को देख करके उसके दुख के शामिल होना चाहिए और हरेक प्रकार से उसका जो हक है उसको दिलाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो कोई वकील भाई हो तो बिना ये फीस लेकर के उसके लिए समझो कि आपने सरकार में लड़ करके के उसका धन दिला देना चाहिए और हरेक भाई को इस विषय के वहां हरेक प्रकार की चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे विधवा का जो धन है वो विधवा को मिल जाओ। अपने यहाँ समझो कि एक प्रकार से विधवा अस्सी का जो धन है उसको हम आठ आना ब्याज देवे और बैंक में हमारा चार आना ब्याज मिले तो एक प्रकार से वो चार आना के ब्याज का नुकसान सह करके भी और विधवा स्त्री को अधिक ब्याज देना चाहिए। ये उनकी एक प्रकार से सेवा है। हरेक माता बहनों को और भाइयों को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण से, हमारे द्वारा कोई विधवा स्त्री को दुख न पहुंच जावे। करनी चाहिए उनकी सेवा, और सेवा नहीं बने तो उसको दुख तो कभी देना ही है तो नहीं चाहिए। ये हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। विधवा माता की जो सेवा है वो इतनी दामी चीज है कि समझो कि जैसे 100 गवा की सेवा की जावे और एक विधवा स्त्री की आपने सेवा की जावे, तो विधवा स्त्री की जो सेवा है वो 100 गवा से भी बढ़कर के सो है, क्योंकि वो तो पशु है, गऊ है सो, और वो विधवा मनुष्य, और उसने अपने समझो कि धर्म का पालन किया है। इस प्रकार से जो वेद धर्म को पालन करने वाली जो विधवा स्त्री है वो देवी के समान है। उनके दर्शन से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उनके चरणों के मां नमस्कार हम लोगों को करना चाहिए। इस लोक के बीच के मां समझो कि उनका दर्शन करके के स्वागत स्त्रियां पवित्र हो जाती है, हम लोग पवित्र हो जाते हैं, देवता लोग एक प्रकार से उनका आदर करते हैं। इस लोक के बीच के मां वो सन्यासिनी के समान, एक महात्मा के समान है। यह बात समझ कर करके उनका खूब आदर करना चाहिए। आप याद रखो कि भोग भोगने वाली जो एक सुहागन स्त्री है उसका जो इस संसार के मां जो आदर है उससे अधिक आदर विधवा स्त्री का होना चाहिए। हम लोग जो ये विचार करते हैं कि कोई मांगलिक काम के मां विधवा स्त्री को नहीं बुलाना चाहिए, ये उसका अपमान करना है। हम लोगों को तो ये ख्याल करना चाहिए, एक उसको बुलाने की चेष्टा करनी चाहिए, किंतु विधवा माता का यह कर्तव्य है कि किसी भी मांगलिक काम के मां, विवाह शादी के बीच के मां, समझो कि उसको शामिल होना ही नहीं चाहिए। उसको समझना चाहिए कि ये तेरे लिए कलंक है। जैसे कोई एक सच्चा सन्यासी साधु महात्मा है और उसको हम विवाह शादी के मां बुलावें और वो साधु आवे, तो साधु के लिए एक प्रकार से कलंक है। इसी प्रकार से थी वो विधवा बहन को ये समझना चाहिए कि मेरे लिए एक प्रकार से थी ये तो कलंक है। ये समझ करके उसको वहां से दूरी रहना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए और मन के वहां बैराग रखना चाहिए। लोकी का जो ऐश्वर्य है उसको धूल के समान समझना चाहिए। जो समझो कि आपने इत्र है, फुलेर है, लिवेंद्र है, इनको घड़े के पेशाब के समान समझ करके इसका दूर से त्याग कर देना चाहिए। जैसे वृद्ध आदमी एक प्रकार से थी विषयों का त्याग कर देता है, इसी प्रकार से थी त्याग कर देना चाहिए। संसार के बीच के वहां इस प्रकार से अपने वेद धर्म को पालने वाली जो विधवा माता है वो समझो कि देवी से भी बढ़कर के है, स्वागन स्त्री से भी बढ़कर के है। वो साक्षात समझो कि अपने चतुर्थ आसनी जो सन्यासी है उनसे भी जो बढ़ करके है, क्यों कि वो गृहस्थाश्रम के बीच के मारे करके के विषयों का त्याग करके अपना जीवन बिताती है। सन्यासी तो समझो कि अपने विषय भोगों को त्याग करके जंगल में जाकर एकांत में रह करके के किले के मारे करके अपना जीवन बिताता है, मन इंद्रियों को वश में करता है, और वो एक प्रकार से घर के मां गृहस्थ के बीच के मां रह करके के खुले मैदान में रह करके और कामदेव के मस्तक के ऊपर लात मारती है, और वो घर के बीच के मां रह करके विषयों को त्याग करके के अपना जीवन बिताती है, मन और इंद्रियों को बस में कर करके तपस्या के मां अपना जीवन बिताती है। उसको धन है, उसके माता पिता को धन है।
विधवा स्त्रियों के धर्म के विषय का ये व्याख्यान आज मिति जेठ सुदी दू शनिवार सम्मत 2010 तारीख 13 जून सन 1953 को श्री जयदयाल जी गोविंद का ने ऋषि के स्वर्गाश्रम गीता भवन के हाल में करीब 6:15 बजे दिया।